राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 1992 प्रातः 8 बजे गीता प्रेस में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान ने अपने स्वरूप को बताया है बहुत विलक्षण ढंग से। विशेष भगवान ने बताया मध्यम शतक में। ऐसा कहते हैं कि पहला शतक कर्म योग का है, दूसरा शतक भक्ति योग का है, तीसरा शतक ज्ञान योग का है। ऐसे गीता कांड त्रयात्मिका का मधुसूदनाचार्य ने गूढ़स्थ दीपिका में लिखा है। परंतु देखा जाए तो बात बहुत विलक्षण है। मध्य शतक में जितना भक्ति का विशेष वर्णन है इतना पहले शतक में ज्ञान कर्मयोग का नहीं है। और कर्मयोग में जितना वर्णन है 6 अध्यायों में उतना अंतिम शतक में ज्ञान योग का वर्णन नहीं है। मानो कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग तो अपने अपने शतक में विशेष वर्ण भक्ति का है। इतना कर्म शतक में कर्म का वर्ण नहीं, उतना ज्ञान शतक में ज्ञान का वर्ण नहीं, जितना भक्ति का वर्ण है। तो भक्ति का वर्ण इसमें भी जा गया है, ज्ञान शतक में भी ज्यादा है, जिसमें 7वें अध्याय में आरंभ से भगवान ने विष्णु पास बताई। अर्जुन के एक तरह का दुख था, दुख कहते हैं साधन करता है, वो साधन करते करते पूर्णता न प्राप्त हो और बीच में मर जाए और योगाचरित मान से योग से मन चलायमान हो जाए तो अप्राप्त योग संसिद्धि, योग संसिद्धि वो तो प्राप्त होगा नहीं, वो किस गति हो जाता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा है योग भ्रष्ट है, उसकी योग भ्रष्ट होता है उसकी क्या गति होती है। उसमें भगवान ने बहुत विलक्षण बात बताई, जैसे 2वें अध्याय में कहा कि नेहाभिक्रम नाश होती साधन के उपक्रम का आरंभ का भी नाश नहीं होता, ऐसी उसमें कहता है पार्थ नहीं वे ना नाम उत्सव बिना शस्त्र से रहते थे, न यहाँ न वहाँ कल्याण कृत कष्ट दुर्गति न गच्छ कल्याण का ही काम करने वाला कोई भी दुर्गति को नहीं जाता। तो जैसे स्वल्पम वैसे धर्म सीमा निष्काम कर्म के लिए बताया, यहाँ योग का जिज्ञासु होता है। योग योग में कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब आ जाता है। एक बात याद आएगी बीच में, योग भ्रष्ट की बात बताई है, वो वास्तव में ध्यान योग के लिए बताई हुई है। छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। दूसरा गीता में जो साधना है वो विवेक प्रधान है। ज्ञान है वो विवेक होते हुए भी अंतःकरण की प्रधानता है, वहाँ कर्म की प्रधानता है। क्योंकि योग यूनियन योग है और गीता के मुख्य विषय में है विवेक प्रधान। इस वास्ते आरंभ किया है गीता का तो देह देही का विवेक किया है, शरीर शरीरी सत्य असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी इसका विवेक किया। टीकाकार जी कहते हैं आत्मनात्म का विवेचन है इसमें, आत्मा तो कुछ नहीं है। किसी भर क्या पड़ा आत्मनात्म है, सुन आत्मा है सही आत्मा है आत्मनात्म घुसने कितना। तो उल्टी दिशा की बात है वो। इसमें विवेक का वर्णन सत असत का विशेषता क्या है, किसमें ईश्वर शब्द नहीं आया, ब्रह्म शब्द नहीं आया, आत्मा शब्द नहीं आया, अनात्मा शब्द नहीं आया, माया शब्द नहीं आया, प्रकृति शब्द नहीं आया, अविद्या शब्द नहीं आया, शब्द नहीं आए। 20 श्लोक है, 11 से 30 तक 20 श्लोक है, उनमें ये तुम्हारा आध्यात्मिक शब्द ही नहीं आए। इस वास्ते आत्मनात्मा का विवेचन हो जाता है अर्थ से, पर जिसमें शब्द नहीं है। तो क्या है, शरीर और शरीर ये दो है, ये दो माने बिना स्वर्ग की प्राप्ति लिए भी आदमी कैसे उद्योग करेगा। तो कल्याण की बात दूर रही, परलोक में सुख चाहता है, स्वर्ग चाहता है, उसके लिए भी आत्मनात्मक विवेचन की इतनी जरूरत नहीं जितनी शरीर शरीर की विवेचन की आवश्यकता है। आत्मनात्मक विवेचन तो है आत्म कल्याण के लिए, और ये तो सबके लिए काम की चीज है। क्यों शरीर शरीरी दो है तब तो नरकों में जाएगा स्वर्गों में जाएगा, शरीर से अलग नहीं हो तो कह जाएगा। तो जितनी पारलोक गतियां होती है सब गतियों में उपयोगी है, सत असत नित्य अनित्य शरीर शरीरी इनका विवेक करना सबके लिए उपयोगी है। तो ये विवेक की प्रधानता है, और योग भ्रष्ट होता वो विवेक ही नहीं होता है। ध्यान योगी होने संभावना है ना, विवेक हो तो वो योग भ्रष्ट नहीं होता, भगवत भक्त होता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण क्या है, उनमें विवेक है, जो विवेक जड़ चेतन का विवेक करना है वहां पर। योग से मन स्तरित होने से जो गिरता है वो ध्यान योगी गिरेगा, जो मन लगाएगा परमात्मा में वो गिरेगा, जिसको मन नहीं लगा विवेक ही करना है वो कैसे गिरेगा। तो ना विवेक गिरता है ना भगवत गिरता है, ये योग वर्ष होते ही नहीं। तो भगवत भक्त की महिमा भगवान ने गीता में बहुत विशेष कही है। जितनी भगवत भक्ति की महिमा गीता में कही है इतने ज्ञान की और योग की नहीं है महिमा। ऐसे तो योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या कहते हैं, योग शास्त्र कहते हैं, परंतु भक्ति की महिमा बहुत ज्यादा है। वो भक्ति की महिमा कहते हुए भगवान का योग पुरुष की गति क्या चला तो अर्जुन के घबराहट हुई कि 20 में ही उम्र जाएगा तो क्या दशा होगी। तो भगवान को दया आई अर्जुन की चिंता देख करके, तो अर्जुन कहते पार्थ नहीं वे नाम उत्तर बिना शस्त्रस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कृत दुर्ग संचास गच्छति। पार्थ संबोधन दिया गीता में अर्जुन के लिए, पार्थ संबोधन 38 बार आया है सबसे अधिक, कांते 24 बार आया है, 38 बार कोई संबोधन नहीं आया पास आया। तात्पर्य क्या है कि प्रथा के पुत्र है, प्रथा खास इनकी पूंछ की थी, बुआ थी, तो अपने अपन को संबंध बताते हैं पास भैया प्यास। तो पास नहीं ना पुत्र विनाश, उसका विनाश नहीं होता। अर्जुन के इस प्रश्न में एक बात खास चिंता की यही है कृत्य नो भी नष्ट्र की तरह नष्ट हो जाता है क्या, एक बदल है एक दूसरा बदल है, उस बदल से थोड़ा सा बदल हुआ से चला और वो बदल पहुंचे नहीं बीच में छिन्न भिन्न हो गया, इस तरह से नष्ट हो जाता है क्या वो, क्यों अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोडो ब्रह्मणपति, अपनी स्थिति पर तो रहा नहीं, जिस सदगति दुर्गति जो गोचती उस स्थिति से रहा नहीं, उसको तो छोड़ दिया और परमात्मा को प्राप्त हुआ नहीं, संसार को छोड़ दिया और परमात्मा को प्राप्त हुआ नहीं, तो क्या गति होगी। इसका उत्तर देते हो भगवान पहले इसी बात को उत्तर देते हैं के पास नहीं वे है ना मुत्र बिना यहाँ ना वहाँ किसी की वो दुर्गति नहीं होती, यहाँ भी जो साधन करता है उसकी दुर्गति नहीं होगी, मरने पर भी दुर्गति नहीं होती, नहीं कल्याण कृत कृत दुर्गन तातगति। ये आधा श्लोक बहुत विचित्र है, पूरा का पूरा श्लोक है 40वां, परंतु उत्तरार्ध में ताज संबोधन दिया, नहीं कल्याण कृत कष्ट, किसी तरह से ही कल्याणकारी में लग गया, भगवान में लग गया, अपने हृदय से लग गया किसी तरह से ही, तू कल्याण कृत है, कल्याणकारी काम करने वाला है, उसकी दुर्गति नहीं होती, उसके लिए शब्द दिया ताज संबोधन। गीता भर में एक बार आया है ताज संबोधन, गीता भर में एक बार आया, दो बार नहीं आया। प्यारे तात पिता को कहते हैं, पुत्र को भी कहते हैं, भाई को भी कहते हैं, मित्र को भी कहते हैं तात प्यारे, तो ये इतना स्नेह से कहा दुर्ग से नहीं हो सकती। ऐसे कहकर योग वृष्टि गति का वर्णन करते हो छठा अध्याय पूरा किया, तो योग की महिमा कहने के लिए तपस्वी भी देखो योगी, ज्ञानी भी होगी मत होती है, कर्मी विस्तार देखो योगी, तस्मात योगी भगवान तो योगी हो जा, ज्ञानी कर्मी तपस्वी सबसे अधिक योगी है। फिर कहते हैं योगी नाम सर्वेशम, जितने तरह के योगी होते हैं, कर्म योगी, भैंस योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनाश योगी, कई तरह के योगी हैं। तो योगी नाम की सर्वेशम, जितने योगी हो सकते हैं उन योगियों में सब में मधु तेज अंतरात्मा, अंतरात्मा मधुगत प्रेम है मेरे में और श्रद्धा विश्वास करता है मेरे पर और भजन करता है, वो युक्ततम है, सब योगियों से श्रेष्ठ युक्ततम, युक्त युक्ततर और युक्ततम। तो जैसे भक्त के भगवान की बात चलती है तो वो फिर मस्त हो जाता है उसमें, इस बात सुहाती नहीं, भगवान की भगवान बात करता है। तो भगवान के भी जब योग की बात चली, भक्त की बात चली, तो भगवान की दूसरी बातें भूल गए। सातवां अध्याय अपने चलने शुरू कर दिया, अब उनके प्रश्न की जरूरत नहीं। इतना भगवान के कहने का वेग रहा, कहने की मन में आई। सातवां अध्याय 30 श्लोकों का पूरा भगवान ने कह दिया। सातवें अध्याय के अंत में अधिभूत अधिदेवादि का है, वह छबत योग वर्णन है, वो प्रश्न आठवें में पूछ लिया। तो आठवां अध्याय उसी उत्तर में कह करके नौवां अध्याय फिर कहा। भगवान कहने की मन में रहेगी बहुत, पूछ ली बात बीच में कहनी पड़ी। इस बात को कहते हैं तू सुन, फिर सुन। विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा सातवें में की, ऐसे ही नौ में भी विज्ञान से ज्ञान कहने की बात की। तो पहले कह दे भाई क्यों कहे कि बीच में व्यवधान पड़ेगा ना, आसपास जाएगा। इस बात से विज्ञान से ज्ञान कहता हूं, ऐसे कहा। तो सातवां अध्याय में बात बताते हैं, ये तीन बात है, मदगते अंतरात्मा, श्रद्धावान और भजते। ये तीन बातें सातवें अध्याय के पहले में कही थी, 29-30 में ये बात कही। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय संसे मृत्य ब्रह्म विदु ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अर्जुन कर्म से अखिलम साधि भूतादि देव साधि यज्ञ से विदु प्रयाण काले से मान से सब भजत। ये विषय वहां कहा, यही योगी नाम सर्वेशम वहां भी यही बात कही। और यही बात वहां 12 अध्याय के दूसरे श्लोक में सही है, मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपास से श्रद्धया परियो पैसास्ते में युक्त तमाम। यही 12वें के अंत में ये तो धर्म आवृतम यथोत्तम परियोपास से श्रद्धा दादा मत परमा भक्तास्ते मे प्रिया। भक्त बहुत प्यारे लगे, अतीव मे प्रिया रस्ते में युक्त तमो मसा। जैसे समय युक्त तमो मसा, ऐसे ही 12वें के दूसरे श्लोक में कहा, मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास श्रद्धया पर युपेशा ते में युक्त तमा मसा। समय युक्त तमो मसा एक वचन है, ते में युक्त मसा मसा उन्हीं के भी शब्द दिया। तो सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि समग्र माम, ये समग्र विशेषण भगवान ने कहा अपने एक ही है। इससे पहले कर्मों के विषय में जाया है, यज्ञ आय आचरता कर्म समग्रम प्रवृत्ति से कर्म समग्र बिल्ली बता रहे, परंतु भगवान का स्वरूप समग्र है ये सातों में आया है, जहां ये सठ को आरंभ किया है। तो मेरा समग्र रूप है, उस समग्र रूप का वर्णन एक एक किया है। 29वें में जरा मरण मोक्ष आयो, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए। तो जगह जगह जन्म मरण की बात कहते हैं, जरा मरण की बात हर एक दिन ही कहते हैं, जन्म मरण दूर हो या जन्म मरण, या जरा मरण मोक्ष आयो सा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुग्रस्त वहां जन्म मृत्यु आया है। तो जन्म मृत्यु तो जगह जगह आती है, पर जरा मरण आया। इसमें तात्पर्य क्या कि मेरी भक्ति करता है वो जरा मरण से मुक्त हो जाता है। वहां वृद्धावस्था में जो दुख होता है वो दुख भी नहीं होता, रोग में दुख होता है वो दुख नहीं होता, उनसे मुक्ति हो जाती है। जन्म मरण जरूरी दुख दोषानुग्रस्त जरा मरण मोक्ष है। तात्पर्य इसका होता है कि व्यवहारिक शारीरिक दुख आएगा तो भी उसको दुख नहीं होगा, और गति का दुख होता है वो भी दुख नहीं होगा। मरने के बाद में क्या गति होगी, तो शरीर के रहते हुए दुख नहीं होगा, शरीर के जाने का दुख भी नहीं होगा। दोनों विचार करने के लिए जरा मरना मोक्ष आया। मेरा आश्रय लेके व्यसन करते हैं तो वे सब जान जाते हैं, सब जानते हैं समग्र रूप को। तो समग्र रूप क्या कि ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म जीवात्मा को जान जाते हैं, कर्मों को जान जाते हैं, अधिभूत आदिभूत सृष्टि जितनी है भूत भूतों की उसको जान जाते हैं, और अधिदेव देवताओं की सृष्टि को जान जाता है से और क्या है जो अंतर्यामी परमात्मा है सब परिपूर्ण उसको जान जाते हैं। तो अंतर्यामी परमात्मा और देवता रूप से ब्रह्मा आदि परमात्मा और अधिभूत इनमें जो संपूर्ण भूतों में परमात्मा और कर्म जो किए जाए कर्मों का भी तत्व वास्तव में जन्म मन से छूटने के लिए कर्म योग हुआ वो तत्व है, जीवात्मा का तत्व है और निर्गुण ब्रह्म है वो जान जाता है। तो समग्र ब्रह्म के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म आता है। लोगों में प्रचलित ऐसी बात है, शास्त्रों के पढ़ने से ऐसी बात आती है कि ब्रह्म के अंतर्गत सब है, ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसके अंतर्गत से भगवान सगुण है, क्योंकि परमात्मा के किसी अंश में माया है, माया अंश में है उनको कहते हैं भगवान ईश्वर, और माया रहते वो है ब्रह्म। तो माया जितने हो तो ईश्वर है, तो ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर हुआ। पर गीता कहती है कि मेरे अंश में ब्रह्म हुआ, बताओ गुरुदास वहां बसर गीता पढ़े हुए भाई खैर विचार करे जरा मरण मोक्ष माम आश्रय मेरा आश्रय यत्न करते हैं, यत्न करते हैं मेरा, वो ब्रह्म जान जाते हैं, अध्यात्म जान जाते हैं, कर्म जान जाते हैं, अधिभूत जान जाते हैं, अधियज्ञ अधिभूत अधियज्ञ और अध्यात्म अतिदेव सबूत जान जाते हैं। तो समग्र मिलने में सब हो गया, ब्रह्म भी उसका एक अंग आया है। ये समग्र परमात्मा, तो ईश्वर परमात्मा समग्र है, उसका एक अंश है, इस वजह से ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का आधार मैं हूं, मेरा मैं आधार ब्रह्म के आधीन नहीं हूं, ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूं, मेरा अंश ब्रह्म है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अमृत से अव्यय से अमृत अव्यय अविनाशी जो परमात्मा तो निर्गुण है वो अमृत अव्यय है, जरा मृत्यु जरा दुख तो अमृतम अश्नु थे, जरा मृत्यु जरा दुख विमुखता अमृतम अश्नु थे। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत से अव्यय से अव्यय मांग्या से अव्यय शब्द का बड़ा विलक्षण प्रयोग हुआ है, जीवात्मा के लिए भी अव्यय आया है, ईश्वर के लिए भी अव्यय आया है, आत्मा के लिए भी अव्यय शब्द आया है, विराट रूप के लिए भी अव्यय शब्द आया है, दृश्यात्मानम अव्ययम मन से तत्सक्यम मेरा आत्मा मन से तत्सक्यम ईसा मया दृष्ट मिशी प्रभु योगेश्वर तत्व में तुम दर्शियात्मान अव्ययम जो विराट ये संसार रूप है ये भी अव्यय अविनाशी जीवन में अविनाशी है, तो उसको सब जान जाएगा। तो भगवान ने सगुण की महिमा बहुत विशेषता से कही इस वास्ते ईश्वर की मुख्यता गीता में है, ब्रह्म की मुख्यता नहीं है। निष्पक्ष होकर सरलता से देखें ऐसी विलक्षण भाष है गीता। तो समग्र रूप हुआ ब्रह्म अध्यात्म और कर्म, कर्म और अध्यात्म और ब्रह्म वाला, तो ये दो दो रूप हुए, अधिभूत अधियज्ञ, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ। अपने बताया भी ऐसे तीन भेद बताए, तीन विभाग, तीन विभाग किया, उसमें से छह विभाग किए। तो तीन विभाग हुआ एक तो फिर भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, तुमने कहा तो हमने कहा कि वो निर्गुण निराकार की बात है, ब्रह्म कर्म और अध्यात्म ये, और ये सगुण की है, शादी भूता देव शादी के विदु, ये सगुण की चीज है, वो निर्गुण निराकार, सगुण ने निराकार की, ये साकार की, ऐसी बात है। इनमें दोनों बात होगी, ब्रह्म और परमात्मा एक हुए, अधिज्ञ परमात्मा और अध्यात्म और अधिदेव एक हुए, और कर्म और अधिभूत एक हुए। मन क्रिया सब होती है पदार्थों में, भौतिक चीजों में क्रिया में, इनमें क्रिया होती है, सब कर्म इनमें होते हैं, भौतिक सृष्टि से उनसे कर्म नहीं होते। देवताओं में आदि कर्म हो तो वो भी अति भूतों में ही आ जाते हैं वो भी। तो ये सब समग्र रूप मेरा है। और अध्यात्म विद्या अध्यात्म शास्त्र एक है ईश्वर का जो आस्तिक, तो एक भौतिक साधना है, एक आध्यात्मिक साधना है, एक आस्तिक साधना है। ये तीनों को तीनों योग कहते हैं। आदि भौतिक साधना का नाम है कर्म योग, आध्यात्मिक साधना का नाम है ज्ञान योग, और आस्तिक साधना का नाम है भक्ति योग। ये विलक्षणता, और ये तीन निर्गुण होते हैं तो भगवान का समग्र रूप हो जाता है। तो आदि भौतिक करने वाला कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि करना भौतिक सृष्टि में होता है, इस वास्ते करना पूरा हो गया, उस वास्ते वो कृतकृत्य हो जाता है। और जानना आध्यात्मिक दृष्टि से है, तो जान लेने से आध्यात्मिक साधना पूरी हो जाती है। और परमात्मा की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तब आस्तिक साधना पूरी होती है। इस बात तो भगवान ने बहुत विलक्षण बात बताई, भगवत गीता में अपनी बात खोल कर रख दी। इस बात कई लोग कहते हैं कि भाई गीता समझना हो तो पहले से दर्शन पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो तो गीता समझ में आवेगी। मेरी एक धारणा है, एक हमारी धारणा बदल गई, एक गीता का अर्थ समझना हो तो पहले शास्त्र मत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो तो गीता नहीं समझ सकोगा, गीता समझ ही नहीं सकोगा, वो शास्त्रों की बुद्धि वही गीता में लगी जाएगी। तो भक्त होगा भक्ति करेगा, और ज्ञान मार्ग योग तो ज्ञान की बात कहेगा, और भौतिक साधना के कर्म योग की बात कहेगा, गीता नहीं जानता। गीता तीनों बात बताती है, जैसे भागवत एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो में अप्रोक्ता, तीन योग मैंने कहे, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों कहे। तो तीनों अलग अलग स्वतंत्र है कर्मयोग भी। अब उनमें आचार्यों ने, श्री शंकराचार्य ने बताया है, पहले कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। कर्मयोग से मर्दोष दूर होता है, भक्ति योग से विक्षेप दूर होता है, और अज्ञान दूर होता है ब्रह्म ज्ञान से, वो ज्ञान योग से होता है। रामानुजाचार्य कहते हैं पहले कर्म योग है, इसके बाद में ज्ञान योग है, और इसके बाद भक्ति योग है। वो भक्ति योग फल मानते हैं। कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है, बौद्धिक से ऊंचा उठता है। इसके बाद ज्ञान योग आता है तो आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा क्या है इसका ज्ञान होता है। इसके बाद जो परमात्मा ज्ञान है भक्ति योग होता है। तो रामानुजाचार्य महाराज का ऐसा करना है इस क्रम से। और गीता में जो 20वां अध्याय बताया है उसमें ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों का वर्णन है। पहले साफ के जाए योगास्त्रयोग में आवाज तीनों योग के। उसमें भी वे कर्म योग की बात बताई तो उसकी अवधि बताई है कि कर्म योग कहां तक करना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावता। जब तक वैराग्य न हो पूरा संसार से तब तक वो कर्म योग करे, अथवा मत बस मत कथा श्रवणा दो श्रद्धा यावर न जाए थे। जब तक मेरी कथा में श्रद्धा न हो तब तक करे। तब कर्म योग करने हुए चाहे तो अध्यात्म ज्ञान योग का अधिकारी हो जाएगा और चाहे भक्ति योग का अधिकारी हो जाएगा। और उनके लिए अगर ऊंचा पढ़ने पर क्या बताया, ज्ञान निष्ठो विरुक्त हुआ मद भक्तो वान अपेक्षक संगान आसमान तक शरीर अभिधि घोषणा। ज्ञान निष्ठो विरुक्त हुआ, ज्ञान निष्ठ और विरुक्त हो सर्वथा, अथवा मद भोग मद भक्त हो वह अनपेक्षा, अनपेक्ष कोई इच्छा नहीं है ऐसा मर भक्त है। तो ज्ञानी और भगवत भक्त विधि से ऊंचा उठ जाएगा। उसके लिए विधि लागू नहीं पड़ेगी, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दूसरों के लिए है। ज्ञान निष्ठो विरुक्त हो वह मद भक्त हो वह अनपेक्षा सर्वंगान आसमान त्यक्त हुआ। ब्रह्मचारी के चिन्ह जो धारण करने वो छोड़ दे, गृहस्थ के धारण वो छोड़ दे, सन्यासी के जो देवेश भूषादि वो छोड़ दे, सरंगान आसमान त्यक्त हुआ सरे अविधि गोसर, उसके विधि लागू नहीं होती। शास्त्र की विधि तब तक लागू होती है जब तक भगवान का भक्त नहीं हो जाता और जब तक ज्ञानी नहीं हो जाता। तो भक्त से दो तरह का हुआ, ज्ञानी दो तरह का हुआ। एक साधक भक्त होता है, एक सिद्ध भक्त होता है। एक साधक ज्ञानी होता है, एक सिद्ध ज्ञानी होता है। तो साधक ज्ञानी सिद्ध ज्ञानी के साधक के लिए वो तावत कर्माणि कुर्वीत, और सिद्ध में से सर्वंगान आसमान त्यक्त हुआ चले अति गोचर, उसके लिए विधि निषेध कुछ लागू नहीं होता। ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण लोगों के लिए है। एक बात और बताई कि कर्म योग करते हुआ स्वधर्मनिष्ठ है तो स्वधर्म जो ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृत से अभ्यस और शाश्वत से धर्म से, ये शाश्वत धर्म कर्म कर्मयोग है। शाश्वत धर्म से ये कर्मयोग है। और सुख से एकांत कश्य से ये क्या रहा, भक्ति योग अत्यंत सुख में मिलता है। तो इनका आश्रय सुख में हूं, तो ज्ञान योग भक्ति योग कर्मियों का आश्रय में हूं। अब ज्ञान भक्ति योग में चलता है तो धर्म का वर्णन करता है। वो धर्म वाला श्लोक ऐसा है कि स्वयं धर्मनिष्ठ है, श्लोक याद नहीं है भाई, अपने धर्म दृष्टि है वो महाराज परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। पहले तो अवधि बताई गई कर्म तब तक करे जब तक ज्ञान का अधिकारी न हो, अथवा भक्ति का अधिकारी न हो। अगर ये बता के स्वधर्मस्थ अपने धर्म में स्थित हुआ है परम भक्ति ज्ञानम, यदि अहेतुकम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा और वो भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कौन से सिद्ध ज्ञान और सिद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी इनसे कर्मयोग से ही। तो कर्मयोगी सिद्ध भक्ति प्राप्त साधन भक्ति करके परमात्मा प्राप्त करे, साधन ज्ञान प्राप्त करके तत्व की प्राप्ति करे, चाहे कर्मयोग करता हुआ भी साध्य तत्व को प्राप्त करे, ऐसा निर्णय 20वें अध्याय में भगवान ने किया। तो ये पूरा ज्ञान ले कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, तब समग्र ब्रह्म को जान ले, सबको ठीक से जान ले। और वो जानने वाले के लिए कहता कर्मयोग पूरा हो जाए तो कृतकृत्य सुभाष हो, कृतकृत्य हो जाता है। और ज्ञान योग पूरा जानने से वो ज्ञात ज्ञात भी होता जाए, जानने का एक पूरी जान ले। और भक्ति होने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, जिसको प्राप्त करना चाहिए वो भगवान मिल जाते हैं, फिर प्राप्त प्राप्त भी होगा। ये तीनों बातें गीता में कही है, कृतकृत्य भगवत। जिसमें भी भक्तियों का अध्याय जो 15वां है उसमें ये बताया यो माम में मुसमो जनाति पूर्वकम, वह जनाति में माम लिखा है, वो अध्यात्म नहीं है। माम एवं असंपूर्ण जाना थी पुरुषोत्तम, क्योंकि इसमें तीन बातें का वर्णन है। 15वें अध्याय में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन आया। 20 श्लोक है, उनमें 5 श्लोक है संसार के वर्णन में और 5 श्लोक है जीव के वर्णन में और 5 श्लोक है ईश्वर के वर्णन में। 15 श्लोक हुए, उनमें पहले 5 अध्यात्म त्याग निवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग्री अमूढ़ा। तो पहले 5 का धारण करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है और दूसरा 5 करने में भी उत्क्रांत मंत्रूढ़ा नानु पश्यंसी पश्यंसी ज्ञान ज्ञान हो जाता है। अब आधारी ले लेता श्लोक 4 ही होते हैं, उसकी बात बताई कि असंगत आत्मना योग दुष्टा पर वैश्य आत्मा से क्यों वापस उपाय था। तो ये हो गया 11 श्लोक। और यह आदित्य कथन ये भगवान का वर्ण, भगवान की विभूति का, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। तो इस 4 श्लोक ही रह गए, तो 1 श्लोक पहले आ गया। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, मे धाम की प्राप्ति होती है। तो धाम के वर्णन में ये नहीं करते ये श्लोक वहाँ, न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते ये यदादित्य गति भाषे खिलम यमसे यो तत्जो विधिमाम गम इसके पास का है। तो 5 श्लोक हो गए। अब अगर ये 5 श्लोक रहे, उन 5 श्लोकों में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम नाम से कहा, संसार का वर्णन क्षर पुरुष से नाशवान भौतिक चीज ये रूपा क्षर पुरुष का वर्णन किया। और ममरी वाण से जीव लोग जीव होते हुए अक्षर पुरुष का वर्णन किया। और अगर ही पुरुषोत्तम का वर्णन किया पुरुषोत्तम नाम से, क्षर से अक्षर अक्षर क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्व अक्षर उच्चते उत्तम पुरुषस्व अन्य परमात्मा, ते पुरुषोत्तम परमात्मा है। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम को जान लेता है उसके लिए ये साथ कृतकृत्य से और बता दिया, यो मा मे जाना थी पुरुषोत्तम तो भक्त हो ही जाता है, हो जाता है करना भी बाकी नहीं रहता, मन कर्मयोग की बात भी सिद्धि हो जाती है। और गच्छन्ति अमूढ़ा पदमद्यम तत्, अमूढ़ा जो भौतिक तत्व को भी ठीक जान लेगा तो वही अमूढ़ है, मूर्ता दूर जाए, यो माँ में असमूढ़ हो, यहाँ भी असमूढ़ है वहां भी अमूढ़ है, तो मूर्ता उससे जागी है। तो भगवत भक्ति करने से मूर्ता चली जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, और माँ में असमूढ़ हो सर्वभाव भजती माँ भक्त हो गया और कृत्य कृत्य शुरू हो गया। तीन बातें हो जाती है भगवत भक्ति से। एक भक्ति करने से कर्म योग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया, भक्ति योग भी हो गया। तो भगवत भक्ति की महिमा बहुत विशेषता से गई, उसको बताया भगवान ने, समग्र भगवान। तो समग्र भगवान का स्वरूप है, उसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार जो कुछ बताया। अब वो जो ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान से ज्ञात ज्ञातव्य होता है, तो ज्ञात ज्ञातव्य कब होता है, जब ज्ञे तत्व को ठीक जान देता है। तो ज्ञे तत्व का वर्णन 13वें अध्याय में किया, ज्ञे यम यत्तत्प्रवक्ष्यामि। उस ज्ञे में कृष्ण विष्णु प्रभु विष्णु इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बता दिया और ईश्वर को भी बता दिया, सर्वतः पानी पाते सर्वतोषमुख सर्वतुति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय असतम सभ्य निर्गुण गुण भोक्ति निर्गुण गुण सब आगे भगवान के स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, निर्गुण भी आ गया, गुण भोक्ता भी आ गया और सतनाश दुचे थे निर्गुण अध्यात्म तत्व उसका वर्णन आ गया। तो ये ज्ञेय तत्व में सबका वर्णन कर दिया, ज्ञेय जानने के लायक ये परमात्मा है। तो ज्ञेय होता है वो जानने के योग्य होता है, उसमें दो अर्थ होते हैं। मानो जाना जा सकता है जरूर जानना चाहिए, जैसे भगवान राम पुष्प वाटिका में गए तो एक सखी उनको देख करके आई तो उनकी हालत देखी तो सखिया ने पूछा क्या मिल गया तेरे को, क्या प्रशिक्षा हो गई। तब मैं राजकुमार को देख आई हूँ, बिल्कुल चेहरा बदल गया, उसके भाव बदल गया, सब आश्रय पूछती क्या बात है। तो कभी अपने देखो उस घंटा हुई सीता जी नारद जी के बच्चे याद आ गए। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारे बार बगीचा में मिलेंगे, नारद की वचन याद आ गई। तो देखो ये हमारे प्राणनाथ आ गए यहाँ पर। तो उत्कंठा देखी तो वो देखने के योग्य, तो अब देखिए देखने जोगू तो देखने के लायक हुए हैं, उसका नाम ही ज्ञेय है। व्याकरण की जिस चीज है देखने योग्य, और गेम का तो जरूर जानना चाहिए, जानना चाहिए, जानने के योग्य है, जाना जा सकता है ये जानना चाहिए। ये सक्यास और गेयास ये दोनों अर्थशास्त्र है गेय शब्द में। तो ऐसे परमात्मा है वो जानने के लिए भी है और जरूर जानना चाहिए, इस बात से मेरे को असमूल जानने से सब ठीक हो जाता है, कृत कृत भी हो जाता है, मन ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। तो परमात्मा की उपासना भजन करने से निर्गुण सगुण साकार निराकार सब कुछ जान लेता है। ऐसे ज्ञेय का वर्णन किया वहां भी, वास्तव में गीता की साधना ऐसी है, चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, भक्ति योग से चलो, अंत में पूर्णता हो जाती है स्वतंत्रता से। कर्मयोग चलते चलते पूरा, ज्ञान योग चलते चलते पूरा, भक्ति योग चलते चलते पूरा, कोई कारण बाकी नहीं रहता। इस वास्ते जहाँ ज्ञान योग कर्मयोग की बात उसी पांचवा अध्याय में संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगी, आप कर्मों के त्याग की बात कहते हैं, कर्मयोग की बात कहते हैं, तो दोनों में निश्चित हो। जिससे एक और एकम तदमे पुरुष सुनिश्चितम निश्चित कल्याण वो एक बात कही है। तो संन्यासा कर्म निश्चित दोनों कल्याण करने वाले भाई एक क्या कर, तुम कहते कल्याण करने की बात ये निश्चितम श्रेय है, तो संन्यास कर्म योग होता है निश्रेष करो उभो दोनों कल्याण करने वाले हैं। कहते हैं श्रेष्ठ कौन सा है दोनों में, तो करो त्रोत कर्म संन्यासा कर्म योग विशेष थे काम शांत योग की वजह से कर्म योग श्रेष्ठ है। ये नई बात के लिए बोल रहे शांत योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म संन्यासा कर्म योग विशेष थे। ज्ञ अवस्था नित्य संन्यासी उसको नित्य संन्यासी मानना चाहिए, यो न दृष्टि न कांक्षसी, न द्वेष करता है न इच्छा करता है, उसको नित्य संन्यासी मानना चाहिए। तो सांख योगी वो अनित्य संन्यासी, सांख योगी है वो अनित्य संन्यास, तो महाबाहो दुख माव तो योग था, योग के बिना संन्यास प्राप्त नहीं होता। तो संन्यास सांख योग कर्म के अधीन हुआ, और योग हुई तो मिलने से योग यू तो परमात्मा प्राप्त हो जाता सीधा ही। मानो कर्मयोग के लिए सांख योग की जरूरत नहीं है, सांख योग के लिए कर्मयोग की जरूरत है। पहले कर्मयोग करेगा तब सांख योग प्राप्त होगा, इस वास्ते वो कर्मयोग श्रेष्ठ है। और यहाँ भक्ति योग श्रेष्ठ बताया, तुम किसको छोटा बताओ किसको बड़ा, सब ठीक है, परंतु कर्मयोग को भगवान ने विशेष कहा, वो विशेष है कर्मयोग, वो विशेष है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, पांचवें में बताया। तो श्रेष्ठ सभी श्रेष्ठ है, नहीं ज्ञान सदेश हूं तत्व ज्ञान के लिए बात कही है, वो ज्ञान योग की बात नहीं है। ज्ञान योग ज्ञान का साधन है, भक्ति योग भक्ति का साधन है, कर्म योग का साधन है, आगे योग हो जाता है अंत में। योग में सभी होते हैं, समत्वम योग उच्यते, समता, ये खास गीता का विषय समता, उस समता में पहुंचना किसी तरह से ही, तो समता की प्राप्ति करना खास गीता का उद्देश्य। इस बात सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो तया जयो तथो युद्ध आयुष, ऐसे तुम जाते फिर पाप का प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ये समता सांख्य में कहती, योग के विषय में सुनो, अगर योग के विषय में कही समता तो गीता का ध्येय समता पर है। समता क्या, राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो। भगवान ने बड़े जोर से बात बताई, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो दिवस, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष, ये कहां तक चलता है महाराज? संसार में राग और द्वेष चलता है, ये हमारा मित्र ही हमारा बैरी है, ये चीज बहुत बढ़िया है, ये भी घटिया है। व्यक्तियों में राग द्वेष हमारा मित्र है बैरी है, ये चीज हमारे गुणदायक ये अवगुण वाली है, तो वस्तुओं में राग द्वेष इसमें भी नहीं है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग तो माया के कुछ नहीं, ज्ञान योग वाले कहते हैं भक्ति ये माया में है, ये श्रेष्ठ है। ये सब जिज्ञासा हमारा तो ये से परिपंथी लोग जहां जहां वही राग द्वेष पकड़ लेते हैं। इस वर्ष तो भगवान कहते हैं ये ऐसा नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षती, निर्द्वंद महाभाव सुख बंधा पहुंचे थे, निर्द्वंद जो सुखपूर्ण हो जाता है। तो निर्द्वंद क्या, राग द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, राग द्वेष नहीं, ठीक बैठे नहीं, अपने में राग द्वेष है ही नहीं, और उस पद में पहुंच जाए तो शरण अनास मास त्यक्त्वा शरण देवी जी को चला, विधि नहीं है। ये विधि तभी तक विधि और निषेध है जब तक हृदय में राग और द्वेष होते हैं, हर्ष और शोक होते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता का असर पड़ता है, तब तक भी शास्त्र की विधि की आवश्यकता। जब कोई असर नहीं पड़ता तो शास्त्र में असमान नहीं पड़ सकते, उसे सांस निवृत्त हो जाता है, सांस अपने सांस ना हटा देता है, कभी इसको मत कहो। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि कुर्याद विद्वान, उसी विद्वान के लिए ही बता दिया, जो परमात्मा तो जानता है उसके लिए भी कहा। कुर्याद विद्वान जैसे सकता कर्मण्य विद्वान यथा कुर्वंती, कुर्याद विद्वान यह एक बहुत विलक्षण बात बताई। ज्ञानी के लिए अज्ञानी को आदर्श, अज्ञानी के लिए ज्ञानी को आदर्श, इस बात बताई। इक्कीसवें श्लोक में यद जाती श्रेष्ठता से विश्रोधना सहित प्रमाणों करते लोक तद अनुवर्त से, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे लोग वैसे वैसे ही आचरण करता है, और वो सच यथ प्रमाणों करते जिसको प्रमाण करता है लोग उसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष तो आदर्श हुआ और अज्ञानी अनुयायी हुए, पर 25वें श्लोक में कहते हैं सकता कर्मणि अविद्वान सो यथा कुर्वन्ति, अविद्वान से अज्ञानी लोग कर्मणि सकता कर्म में आसक्त है वे जैसे करते हैं, सकता कर्मणि अविद्वान सो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा, विद्वान को चाहिए वैसा करे, अज्ञानी करे चुप करे। तो दोनों ने एक बात बताई, फल दोनों को एक बताया, चिकर्ष लोक संग्रह, लोक संग्रह में अवसर कर तू मर्जी, लोक संग्रह के लिए करे। ज्ञानी आदर्श बने तो लोक संग्रह के लिए, और अनुयायी बने तो लोक संग्रह के लिए, अंत में लोक संग्रह खास उद्देश्य हुआ। मानो लोग जो मर्यादा है शास्त्र की, वर्ण की आश्रम की मर्यादा है, उसके अनुसार काम करे, ये बात भगवान ने विलक्षणता से बताई। इसके लिए ये योग है, सब मर्यादा है, विधि निषेध शास्त्र स्मृतियां वेद पुराण सब इसके लिए कहते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये ठीक है ये बेठीक है, ये सदगति देने वाला है दुर्गति देने वाला है, ये दो बात है। जब पूर्णता हो जाती है तो फिर शास्त्र असमान शास्त्र निवृत्त हो जाता है, अब भाई खुले हो तुम। इस बात से भगवान को भी कहना पड़ा। 29वां श्लोक प्रकृति करवाने के मान प्रकृति के मानने गुण ही कर्माणी सर्वस्व, हाँ प्रकृति गुण समूढ़ा भूल जाते हैं, प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जन ते गुण कर्म सु, प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जन ते गुण कर्म सु, तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण ने विचार ये ज्ञानी के लिए कहा कि तुम्हारे कर्तव्य नहीं है, पर अज्ञानी है वे बिचारे कं कर्तव्य विमोद हो करके और विचलित होकर के अपने बारे से भ्रष्ट न हो जावे, मानो कर्मों में क्या पड़ा है कर्म तो जड़ है जे बताइए, बुद्धि भेद न बुद्धि भेद नहीं कर्म संगे नाम जोश ये सर्व कर्माणि विधि युक्त समाचरण, विद्वान को चाहिए सावधानी से योग का आसन करके अच्छी तरह से आसन करता हुआ लोगों को बुद्धि भेद पैदा न करे तो मर्यादा के अनुसार चले। तो गीता में ये नहीं बताया, जो भागवत में कहा है सरित विधि को ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? अर्जुन है सुनने वाले, वहां सुनने वाले उद्धव, अर्जुन से युद्ध करना चाहता नहीं था, उसको तो भगवान ने युद्ध में लगाया, और उद्धव जी है जो युद्ध नहीं समूह शाह से महाराज कथम भक्ता स्थिति में आपका त्याग हम कैसे करें, समझिए हम तो आपके पास रहेंगे कथम द्रौपदी नारायण पास में रहना चाहता था उसको तो तीर्थ हम भेजा, युद्ध नहीं करना चाहता था अगर युद्ध करो, टेढ़ है तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, खड़े भी टेढ़े ही रहते भात भी टेढ़ी खाते, तो वो बदल जाओ तुम। ये कहते हैं श्रेय भोग तुम भिक्षो भी लोगे, भिक्षा मांग खा लेंगे महाराज, युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करो। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जो आग्रह है वो ठीक नहीं है, ना युद्ध करने का आग्रह, ना जंगल करने का आग्रह, ना एकत्र हो जाने का आग्रह, ना समुदाय हो जाने का आग्रह। कुछ नहीं चाहिए, समुचार नहीं चाहिए। राम जैसे जाई मिले रखे राम, ताई मिले रहिए, इसी तरह उसी तरह उसी तरह कहिए। कोई आग्रह नहीं हो ठीक से चलो, तब जो भगवान ने ठीक हो जाए ठीक। इस वास्ते आग्रह मत रखो, इससे भगवान की गीता है महाराज, विलक्षण बात। अब इसी बात गई, अब आप पूछो कोई बात, इसमें से कहीं गलती हुई, कमी रही हो, शंका रही हो तो पूछो।
ज्ञानेश्वर महाराज की संगति कैसी है कृपा करके? ज्ञानेश्वर महाराज की संगति गीता के बारे में?
ज्ञानेश्वर का मेरे इतना अध्ययन नहीं है। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जो लिखा है वो एक संत की वाणी है, वो गीता की व्याख्या नहीं है। गीता पर संत की वाणी है, उस वाणी के अनुसार चलो कल्याण, में कोई संदेह नहीं है। परंतु गीता के अर्थ इस ग्रह ऐसा नहीं है, उनके योग का मुख्य, योग का वर्णन करना वो मुख्य है। किसी श्लोक पर सत योग मिल जाएगा, सब योग मिल जाएगा। जैसे शंकरानंद गीता है संस्कृत में थी, का भारत वाज भारत वाज की भाना प्रकाश तेतन तत्व उसमें रस है, उसका नाम भारत। वो ज्ञान योग में ले जाएंगे सबको ही, तिलक महाराज कर्मयोग में ले जाएंगे सबको ही, ऐसे ही ज्ञानेश्वर महाराज योग में ही लगाएंगे सबको ही, उधर ले जाते हैं जहाँ ब्रह्म कहते योग का योग। गीता का क्या अर्थ है, कैसा अर्थ है, ये विशेष नहीं कहते, बाबा है संत है खुद चलते हैं, तो बंधे हुए नहीं है। दूसरे भक्ति अर्थ करेंगे तो बंधे हुए करेंगे, श्लोकों में भीतर भीतर चलेंगे, खुले चलते हैं बाबा को गीता के साथ। बड़ा सुंदर विमोचन किया है, खुला विमोचन ऐसे ज्ञानेश्वरी महाराज। हमारी मराठी का ज्ञान नहीं है, हिंदी में देखी तो है मान की थोड़ी हो गई, क्या क्या कहा है उसमें देखा है, कई अर्थ हमारे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सब अर्थ तो मिलते नहीं, सब अर्थ एक ही मिल जाए तो गीता वो एक ही चीज होगी, दूसरी चीज का क्यों होगी? टीका का अर्थ ये एक अर्थ नहीं मिलता, इस राष्ट्र में सरल टीका होती है। ये घड़ियां सब बरबर मिलती हो तो घड़ियां न्यारी न्यारी होती है, नहीं न्यारी न्यारी होने पर भी न्यारी न्यारी रहती है, मिलती नहीं, कोई ये मिटती से कोई दूसरे कोई दूसरे कोई दूसरे, ऐसे गीता पर टीका होते हुए मिलती नहीं आपस में, कोई दूसरे कोई दूसरे स्वतंत्र। ज्ञानेश्वर महाराज की बात स्वतंत्र विचित्र, उनके अर्थ भी विचित्र है, कई की अर्थ अपने हम कहते जो है, कई हम कहते उससे और चले गए हैं। तो किसी का ही अर्थ पूरा मिलेगा नहीं, ना शंकराचार्य का ज्ञान से मिल जाए, ना शंकराचार्य रमण आचार्य बल्लभाचार्य किसी आचार्य का एक अर्थ नहीं मिलता, एक नहीं तो टीका का अर्थ करे ही हो। अब टीका करते हैं तो कुछ कुछ कोई नई बात करते हैं, तभी करते हैं ना, कुछ मन में आती है तो कुछ कोई नई बात कहते हैं। टीकाकार का ये सिद्धांत होता है अपनी बात के, गीता में कितनी टीका करो सब इसके अंतर्गत आ जाती है, गीता के अंतर्गत मुनि के अंतर्गत सब आ जाती है। उसमें कोई विद्वान कोई संत कोई महात्मा किस तरह से करे कोई किस तरह से कहते हैं, मूल में गीता का सब आदर करते हैं। गीता गीता ये भगवान की बहुत विचित्र अनोख ग्रंथ है गीता, ऐसी बात। नारायण नारायण अभूर तत्व इसका परमात्म तत्व की बात लोगों से बिल्कुल निराली है, ये खास बात है। आज से ये वत परिस्थिति कष्ट दे दूसरी चीजों को देखता है, जो परमात्म तत्व का अनुभव दूसरी चीजों का अनुभव है जो अनुभव नहीं होता है। दूसरों में तो त्रिपुटी रहती है ना, देखने वाला और दृश्य और देखना, ये तीन चीज रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में ऐसी त्रिपुटी नहीं रहती है। तो आश्चर्य वत पश्चित कैसे, वो आश्चर्य की नहीं देखता है। आश्रीवत्य सुनता है तो सुनता ही आश्चर्य, जो हम लोग कानों का विषय बना कर सुनते हैं, ऐसे वो परमात्मा तत्व से ज्ञान कानों का विषय नहीं होता है। इस बार सुनने उसका वृक्ष है। ऐसे ही वो आश्चर्य वजह से ही विचारने, दूसरा जो बोलता कहता है वो भी आश्चर्य जो ही है। जैसे हम वाणी का विषय उसका वर्णन करते हैं, ऐसे वाणी के अविषय का वर्णन करते हैं। अपने भी एक पुस्तक में लिखा है वर्णन चीज का वर्णन, क्या पुस्तक है, सह साधना है। तो उसमें हमने एक प्रकरण लिखा है वर्णनातीत का वर्णन, वर्ण में अतीत है, वर्ण में नहीं आवे उसका वर्णन करते हैं। तो वर्णन करना भी उसी और ढंग का ही होता है। और बात विशेषता से ऐसे बताया कि सुचा पेरम वेदन से ही वो करती, तो बहुत विलक्षण बात कही चौथे में कि उसको सुनने पर कोई नहीं जानता। सीधे शब्दों का अर्थ ऐसा होता है, सुस्ता प्यनम वेदन से कर्षित, सुन करके कोई नहीं जानता। ये अधिक तो कोई नहीं जानता, इसका अर्थ क्या हुआ, केवल सुनने सुनने में ही रह जाए तो कोई नहीं जानता। तेरह अध्याय में कहा है उपासनतेमयोग नहीं जानते एवं अजानत श्रुत्वा ने बेदन श्रुत्वा कर उपासते चाहते हैं। तो श्रुत्वा पेन श्रुत्वा कर ही जानते श्रुत्वा पेन श्रुत्वा उपास उसमें लग जाए तत्परता से तब जानते हैं। तो केवल सुनने मात्र से नहीं है, सुनने के साथ साथ उसका ज्ञान करना चाहिए, संपादन तत्व को समझना चाहिए। तो समझेगा तो बात में समझ में आ जाएगी।